आज है 27 अक्टूबर दिन मंगलवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं सुशीला सिंह। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 260 से ज्यादा, राहत कार्यों में हो रही है परेशानी। छोटा राजन की गिरफ्तारी कितनी अहम है भारत के लिए?
टेस्ट हो गया है तो जब ये मुंबई में वापस आएगा अभी इंटरोगेशन के लिए आफ्टर एक्सट्राडिशन, तो नेचुरली काफी चीजें पता लगेगी, काफी पुराने केस भी डिटेक्ट हो जाएंगे, दाऊद के कई लोगों की भी बड़ी अच्छी माहिती मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
बिहार में तीसरे चरण के लिए प्रचार थमा और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में क्या चाहते हैं लोग, सुनेंगे विशेष रिपोर्ट, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में सोमवार दोपहर महसूस किए गए भूकंप के झटकों के असर से मरने वालों की संख्या 260 से ज्यादा हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। 7.5 तीव्रता वाले भूकंप का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ी वाले इलाके में हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीमें काम कर रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी विदेश यात्रा से तय कार्यक्रम के पहले वतन लौट रहे हैं। सऊदी अरब के दक्षिणी शहर नजरान में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक मस्जिद में हुए इस धमाके में कई अन्य लोग घायल भी हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए व्यक्ति ने आत्मघाती हमलावर को मस्जिद में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की थी। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट ने इस साल सऊदी अरब की शिया मस्जिदों में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। केन्या पुलिस के मुताबिक नैरोबी इंटरनेशनल मैराथन में दूसरा स्थान पाने वाले धावक पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। जूलियस जोगू ने 42 किलोमीटर लंबी रेस में साथी धावकों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। अधिकारियों को उन पर शक इस बात को लेकर हुआ कि रेस खत्म होने के बाद भी वो थके हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। पुलिस पूछताछ में जानकारी मिली कि वो एक कूड़ेदान के पीछे छुपे हुए थे और उन्होंने सिर्फ रेस के आखिरी किलोमीटर में ही दूरी तय की। रेस में शामिल रहे हसन उमर ने कहा, उन्होंने मुझे धोखा दिया, ये एक तरह का ढोंग था, ये शख्स सिर्फ आखिरी वक्त में दिखाई दिया, इसलिए जब रेस खत्म हुई तो मैं फिनिश लाइन की तरफ गया, मैंने उन्हें दूसरे स्थान की दावेदारी करते हुए देखा। ये थे हसन उमर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल की सेना का कहना है कि उसने गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर दो हवाई हमले किए हैं। सेना का कहना है कि ये हमले इसराइल में हुए रॉकेट हमले के बाद किए गए। इन हमलों में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इसराइल की सेना ने यह भी कहा है कि हेब्रॉन शहर में सोमवार को दो फलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बजट घाटा कम करने की कोशिश के तहत कल्याणकारी मदों में अरबों डॉलर की कटौती करने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सरकार के प्रस्तावों को रोकने के लिए मतदान किया। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑस्बर्न ने कहा है कि उच्च सदन के इस कदम ने संवैधानिक मुद्दा खड़ा कर दिया है और उससे निपटना जरूरी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। और जैसा कि आपने मुख्य समाचारों में वात्सल्य राय से सुना, अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी इलाके और पाकिस्तान में आए भूकंप में 260 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस भूकंप की तीव्रता 7.5 थी। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में भूस्खलन और तबाह हुई इमारतों को देखा जा सकता है। पूरे ब्यौरे के साथ वात्सल्य राय।
میلرزوند و هنوز خسارات این زلزله مشخص نیست.
یہ آواز اس وقت کی ہے جب اتر پوروی افغانستان میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 7.5 تیورتا والے اس بھوکم کا اثر بھارت اور تجاکستان تک محسوس ہوا، لیکن اس کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی پاکستان میں ہوئی۔ पाकिस्तान में भूकंप के असर से मरने वालों की संख्या 200 के पार हो चुकी है, जबकि सैकड़ों अन्य लोग घायल हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरी पहाड़ी वाले इलाके में हुआ है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री परवेज राशिद के मुताबिक अब तक चित्राल के उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया,
सबसे ज्यादा अभी तक जो जानी नुकसान की इत्तला है वो चित्राल से मौसूल हुई है। इन इलाकों का फजाई सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर और C-130 तैयारे भेजे गए हैं।
वहीं अफगानिस्तान में भूकंप के बाद एक स्कूल से निकलने की कोशिश में हुई भगदड़ में कम से कम 12 छात्राओं की मौत हो गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में राजधानी काबुल से 256 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंदू कुश की पहाड़ियों में था। भूकंप के असर से पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी हुआ, जिससे राहत टीमों को प्रभावित इलाकों में पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोनार्डो सीबर ने BBC को बताया कि भूकंप से प्रभावित इलाका आवाजाही के लिहाज से दुर्गम है। उन्होंने कहा,
That area is remote. One problem common to this area is rock slides from the steep slopes.
वो मुश्किल इलाका है। वहाँ एक समस्या है कि चट्टाने गिरती हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। सड़कें खराब हैं, एयरपोर्ट दूर है और बातचीत के आधुनिक साधन मसलन टेलीफोन और इंटरनेट भी मुश्किल से मिलते हैं। ये थे प्रोफेसर लियोनार्डो के शब्द। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के आसान साधन नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को आशंका है कि भूकंप के असर से मरने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है।
जैसा कि वात्सल्य राय रिपोर्ट में बता रहे थे कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में काबुल से 256 किलोमीटर दूर था। भूकंप के बाद जहां लोग अपने घर लौटने से डर रहे हैं, वहीं राहत कार्य जारी है और राज्य के गवर्नरों को अलर्ट करने को रहने को कहा गया है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने BBC पश्तो सेवा के सहयोगी सईद अनवर से उनके अनुभव पर बात की।
जब जिलजिला हुआ हम दफ्तर में थे, जिलजिला बहुत शरीद था। मकानात आसपास के जो बुलंद इमारतें हैं हमारे दफ्तर, ये बहुत शदीद धचका लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी ये सारी इमारतें गिर जाएंगी। हम दफ्तर से निकले, जब गली में पहुंचे तो तमाम लोग इमारतों से और दुकानों से गलियों और सड़कों में निकले थे। जो तस्वीर काबुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सोशल मीडिया ने हमारे दोस्तों ने पेस्ट किया है, तो उसमें दिखाया जाता है कि काफी सारे घरों और अपार्टमेंट्स की दीवारें जो हैं उसमें दर्ज आई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में काबुल के लोग तकरीबन सब बाहर निकले थे। कुछ इलाकों में जहां लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहां खवातीन का ये डर था कि आज रात अपने घरों में जाएं या ना जाएं, क्योंकि घरों में और दीवारों में दर्द पड़ चुके हैं और लोगों का खौफ ये है कि अगर दूसरा जिलजिला हो जाए तो शायद उनके मकानात गिर जाएंगे।
सईद साहब, राहत के काम की क्या जानकारी मिल पाई है? जो लोग प्रभावित हैं इससे, उनके राहत के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?
जिलजिले के चंद ही मिनटों बाद अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, नेशनल नेचुरल डिजास्टर कमेटी की मीटिंग बुलाई, और इस कमेटी में हुकाम को ये हुक्म जारी किया गया कि जो लोग जिलजिले के नतीजे में मारे गए हैं या जख्मी हैं, उनकी इमदाद के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। और साथ ही जिन जिन शोबों में जिलजिले का झटका शदीद था, वहाँ गवर्नरों को अलर्ट किया गया है कि जो उनके पास मौजूद है उन इलाकों तक पहुँचे।
ये थे BBC पश्तो सेवा के सहयोगी सईद अनवर। उधर पाकिस्तान में इस जलजले में करीब 214 लोग मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में प्रशासन ने 179 लोगों के मारे जाने और 1800 लोगों के घायल होने की बात कही है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने इस्लामाबाद में आसिफ फारूकी से इस जलजले पर जानकारी मांगी।
मैं अपने दफ्तर में था अपने बाकी कॉलीग्स के साथ, और फौरी रिएक्शन तो यही था कि शायद एक छोटा जलजला है, लेकिन सेकंड्स के अंदर अंदर उसकी शिद्दत जो है वो तेज होती गई और पूरा कमरा, मेज, कुर्सी जोर जोर से हिलने लगा। और उस वक्त हमें अंदाजा हुआ कि ये रूटीन का जलजला नहीं है। हम लोग भागे तेजी से बाहर की तरफ और हम बाहर चले गए। इस दौरान चंद सेकंड गुजर चुके थे और भी, लेकिन जलजला मुसलसल आया चला जा रहा था। اور جب ہم باہر پارکنگ لاٹ میں کھڑے ہوئے تو باقاعدہ زمین پاؤں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑیاں زور زور سے ہل رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال پہلے بھی اس طرح کا ایک زلزلہ میں ذاتی طور پہ چونکہ اس وقت بھی اسلام آباد میں تھا تو میں دیکھ چکا تھا, تو میرے ذہن میں فوراً وہی فلیش بیک ہوا کہ یہ اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی شدت کا زلزلہ تو ضرور ہے. اور بہت پریشانی ہوئی اور گلی میں جو باقی لوگ تھے وہ بھی دفتروں سے اپنے اور گھروں سے نکل کے باہر آ گئے تھے اور بہت پینک سچویشن تھی, لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے.
اب تک جتنی جانکاریاں اس وقت تک آپ کے پاس پہنچی ہیں اس کے حساب سے کن علاقوں میں زیادہ اثر ہوا ہے اور کیا استھتی ہے, کتنے لوگوں کے مرنے کی خبر ہے؟
دیکھیے اس کا جو ایپی سینٹر ہے وہ تو افغانستان کا علاقہ فیض آباد کا ہے, وہاں پہ ہے. اس سے جو ایڈجیسنٹ پاکستان کا ٹاؤن ہے وہ چترال ہے. تو ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اسی ناردرن پاکستان سے ہی آ رہی ہیں جو ماؤنٹینس ریجن ہے وہاں پہ, چترال کا علاقہ ہے, مالاکنڈ ہے اس سے, دیر ہے وہاں پہ اس سے ایڈجسنٹ, اور اس کے بعد فاٹا کا کچھ علاقہ ہے. چونکہ یہ بہت ماؤنٹینس اور ریموٹ ایریا ہے تو ابھی تک کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حتمی اطلاع ہے یا ابھی کچھ ایسے اور علاقے ہیں جہاں سے انفارمیشن نہیں آ رہی, لیکن ابھی تک جو انفارمیشن ہے اس میں کوئی لگ بھگ 200 کے قریب موتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور 1500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ گھائل ہیں. گورنمنٹ کے اور ملٹری کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں اور جو 730 پلینز ہیں اس کے ذریعے انہوں نے ان کے تھرو سرویلنس کرنے کی یا سروے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہت سارے علاقے ہیں جہاں تک ابھی پہنچ نہیں پائے ہیں نہ حکومت کے لوگ نہ فوج کے لوگ اور نہ میڈیا کے لوگ, تو یہ جو ڈیتھ ٹول ہے یہ بڑھنے کا بھی خطرہ ہے. ابھی
راحت کا جو آپریشن ہے اس کو شروع کرنے کے لیے سرکار نے اب تک کیا قدم اٹھائے ہیں؟
دیکھیے تین طرح سے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ایک تو ہے ملٹری کا اپنا ایک سسٹم ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو 2005 کا کو ایک تھا اس میں جو سب سے پہلی ریسکیو یا ریلیف جو ٹیم دور دور تک جو ماؤنٹینس ریجن ہے وہاں تک لوگوں تک پہنچی تھی وہ آرمی ہی کی تھی, تو ابھی آرمی جو ہے وہ اس کا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہو چکا ہے. خود جو آرمی چیف ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ان علاقوں کو وزٹ کیا ہے اپنے طور پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے, اور پشاور میں جو ہے وہ بن چکا ہے کنٹرول روم جہاں سے یہ سارا کچھ مانیٹر ہو رہا ہے. ان کے ایمبولینسز ایئر ایمبولینسز جو ہیں وہ جا رہی ہیں ان علاقوں میں. ایک تو یہ فوج کا آپریشن ہے, دوسرا جو ہے وہ سول گورنمنٹ کا ہے. پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ایمرجنسی ریلیف سیل بنا دیا ہے جس کے تھرو جو ہے وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں, جس میں این ڈی ایم اے بھی آ جاتا ہے, این ڈی ایم اے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. تیسرا جو کام ہے وہ این جی اوز کا, یعنی جو غیر سرکاری لوگ ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں, لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں, اب رات بھی ہو گئی ہے, ٹھنڈ بھی ہے ان علاقوں میں, کل برف باری بھی بہت ہوئی تھی, بارش بھی بہت ہوئی تھی, تو جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں تک پہنچنے میں شاید ابھی کچھ وقت لگے گا لوگوں کو.
یہ جو علاقے ہیں حال کے برسوں میں بھی کبھی بھوکمپ کی زد میں آئے تھے یہ علاقے؟
2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں کچھ ایریا جو ہے وہ بٹگرام کا اس سے متاثر ہوا تھا, لیکن ویسے ان علاقوں میں چھوٹے موٹے ارتھ کویک تو آتے رہتے ہیں کیونکہ جو پاکستان کی فالٹ لائن ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے اور ارتھ کویک کوئی ان لوگوں کے لیے نئی بات نہیں ہے, لیکن اتنی شدت کا جتنا اس دفعہ ہے اتنی شدت کا ارتھ کویک پہلے اس علاقے میں ریکارڈ نہیں کیا گیا.
اسلام آباد میں موجود آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے نکھل رنجن. ادھر اتر بھارت میں بھی بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے. وہیں کل گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے جانکاری دی کہ چھوٹا راجن کو انڈونیشیا میں پکڑ لیا گیا ہے. بھارت کی پولیس اور خفیہ ایجنسیاں کافی دنوں سے چھوٹا راجن کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہی تھیں. بھارت کے انوروھ پر انتراشٹریہ پولیس سنگٹھن انٹرپول نے چھوٹا راجن کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کیا تھا. جس وقت چھوٹا راجن کا آتنک ممبئی میں قائم تھا تب اس وقت انکش لگانے کے لیے جن پولیس ادھیکاریوں نے کام کیا اس میں ڈاکٹر پی ایس پسریچا بھی شامل تھے. ہمارے سہیوگی نکھل رنجن نے مہاراشٹر پولیس کے ڈی جی پی رہے ڈاکٹر پسریچا سے پوچھا کہ چھوٹا راجن کا انڈونیشیا میں پکڑا جانا بھارت کے لیے کتنا اہم ثابت ہوگا.
مڈ 90s میں یہ ساؤتھ کے بعد یہ سیکنڈ موسٹ ٹریڈڈ گینگسٹر تھا, بہت ہی کرور اور کافی سارے کھنڈنی کے کیسز, ایکسٹارشن, مرڈر, کڈنیپنگ اینڈ آل دیٹ. پہلے یہ داؤد کا ہی ممبر تھا اس کے گینگ کا, لیکن بعد میں جب ممبئی میں مارچ 1993 میں جب بم بلاسٹ ہوئے تو اس کے بعد اس نے اپنا گینگ الگ بنا لیا تھا और छोटा शकील साउथ के साथ रह गया था, क्योंकि इनका आपस में कुछ झगड़ा चल रहा था, छोटा शकील और छोटा राजद का। तो बाद में जब राइवलरी होगी तो एक दूसरे के ये बहुत बड़े दुश्मन बन गए, तो वन अपमैनशिप आ गई। कभी ये चाहता था कि वो उसके ऊपर रहे, वो दाऊद चाहता था ये इसके ऊपर आए। तो उस कंपटीशन में इन्होंने मुंबई में काफी आग तक फैला दिया था उन दिनों में, 95-96-97 के करीब। तो 97 में मैं जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बना था, पुलिस कमिश्नर मंडावसा थे, और बाद में एक साल बाद शिवनंदन साहब भी जॉइंट सीपी क्राइम बन के आ गए थे। तो फिर हमने इन सब के पीछे हमने जाना शुरू कर दिया, इंस्टेड ऑफ वेटिंग ये करें उसके बाद हम एक्शन लें, हमने कहा कि नहीं, हम इनके पीछे पहले चल पड़ते हैं। फिर ये भागने भागने लग पड़े और इनका काफी इनके इनके पंख वगैरह कट गए थे। लेकिन और ये पिछले कुछ सालों से ये साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादातर उन कंट्री में एक दूसरे भागता था, और दाऊद के ने भी इस पे कई बार अटैक करने की कोशिश करी। अभी ये जब अरेस्ट हो गया है, तो जब ये मुंबई में वापिस आएगा अभी इंटेरोगेशन के लिए आफ्टर एक्स्ट्राडिशन, तो नेचुरली काफी चीजें पता लगेगी, काफी पुराने केस भी डिटेक्ट हो जाएंगे, और श्योरली दाऊद के कई लोगों की भी बड़ी अच्छी माहिती मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो यूजफुल होगी।
जब अबू सलीम को गिरफ्तार किया गया था तो उसको भारत लाने में काफी दिक्कत हुई थी, छोटा राजन को भारत ला पाना इतना आसान होगा?
मेरे ख्याल में ज्यादा अभी मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफी सिनेरियो चेंज हो गया है। इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है, जो आपस के देशों का सहयोग एक हाथ एक साथ, वो काफी बढ़ता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि टेररिज्म के साथ काफी लोग अफेक्टेड है, और टेररिज्म एंड क्राइम माफिया इनका आपस में हमेशा लिंक रहता है। और इंडोनेशिया के साथ हमारी एक्सट्राडिशन की ट्रीटी भी है 2011 से, प्लस उन्होंने बाली में भी काफी बार अटैक हुए हैं, काफी सफर किया इंडोनेशिया ने भी, तो आई एम श्योर वो चाहेंगे, उनके साथ रिश्ते भी हमारे इंडिया के काफी अच्छे हैं, तो मुझे श्योरिटी है कि वो पूरा सहयोग देंगे। लेकिन ये है कि इन चीजों में टाइम लगता है, क्योंकि उनका भी लीगल सिस्टम है।
ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कैसे मुमकिन हो पाया है?
तो कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी काफी हार्ड वर्क कर रही है पिछले कुछ दिनों से, उनके पास भी टेक्निकल सर्विलेंस सपोर्ट काफी अच्छी इम्प्रूव हो गई है, मॉडर्न सिस्टम आ गए हैं, प्लस उनके भी सोर्सेज हैं। ये भी हो सकता है जो आपके मन में है कि दाऊद के गैंग ने इन्फॉर्मेशन दी हो, वेल क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन जनरली क्रिमिनल ही देते हैं, तो कोई उस पर कोई नई बात नहीं है। हो सकता है उसने खुद ही, वो बीमार रहता है आजकल काफी, और उसके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं दाऊद गैंग से, तो वो सोचा होगा कि मैं भी खुद चल पड़ता हूँ, मुझे सुरक्षा मिल जाएगा। हर तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
93 के जो बम धमाके हुए उसके अलावा जो है इस पर कोई बड़ा केस?
काफी केसेस होते थे जो ये किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन वगैरह के, काफी FIR में इसका नाम है, जो लोग जो विक्टिम थे उन्होंने इसका नाम लिया था, कुछ लोग जो पकड़े गए तो उसमें भी इसका नाम आता था। तो आई एम श्योर वो जो डोजियर है वो क्राइम ब्रांच मुंबई ने बना के रखा हुआ है।
छोटा राजन का पकड़ा जाना कई राज खोलेगा, कह रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के DGP रहे डॉक्टर पसरीचा। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार कल थम गया। इस चरण में 6 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। एक रिपोर्ट के साथ पटना से नीरज सहाय।
तीसरे चरण में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद और कांग्रेस के महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी कसौटी पर है। इसी वजह से दोनों गठबंधन प्रचार थमने तक एक दूसरे पर हमला करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार चुनावी प्रचार के दौरान महागठबंधन के नेताओं पर तीखे वार किए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जोरदार पलटवार किया। CM नीतीश कुमार ने कहा कि
श्री अमित शाह जी ने उनको OBC प्राइम मिनिस्टर कहा, तो हम देख रहे हैं कि अब प्रोफाइल उन्हें बदल करके अपने को EBC प्राइम मिनिस्टर कर दिया। इस देश में शायद पहली बार हो रहा कि प्राइम मिनिस्टर का कोई कास्ट और इस प्रकार का सोशल ग्रुप का प्रोफाइल सामने लाया जा रहा हो। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, चैलेंज करते हैं कि डिबेट करने को हम तैयार हैं, डेवलपमेंट पर क्या मॉडल है आपके डेवलपमेंट।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सवाल उठाए उनका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने दिया। उनके अनुसार
भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है, इसके कारण जो उनके ऊपर मानसिक तनाव है उस मानसिक तनाव में वो राजनीतिक प्रलाप कर रहे हैं, कोई तार्किक बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री अब जात बताते हैं, तो लालू प्रसाद यादव बार बार सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी जात बतावे, क्यों पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? लालू प्रसाद यादव मीटिंगों में क्यों कहते हैं युद्धवंशियों सावधान, किस बात के लिए? नीतीश कुमार कहते हैं कि पिछड़े लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्यों?
उधर चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन के अनुसार
तैनात रहेगा और इसके अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 3-टायर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त एयर सर्वेलेंस, मोटरबाइक पेट्रोलिंग, माउंटेड पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है।
सुरक्षा एजेंसियां भी तैयारी चाक चौबंद होने का दावा कर रही हैं। तीसरे चरण में जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें से राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, श्याम रजक और रमई राम, और विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष नेता नंद किशोर यादव और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वृषिण पटेल मुख्य हैं। अब देखना यह है कि पहले दो चरणों की तरह तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ता है और महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कितना बढ़त लेती है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
उधर राज्य में बीजेपी के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव छठी बार पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो 20 सालों से क्षेत्र के लगातार विधायक रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष मेहता से है, जो खुद डिप्टी मेयर रह चुके हैं। बीते 20 सालों से पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव आए और स्थानीय लोग क्या चाहते हैं, ये जानने की कोशिश की पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सीटू तिवारी ने।
पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में घुसते ही गुरुवाणी के पाठ की आवाजें ट्रैफिक के शोर में खुलने सी लगती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर भजन कीर्तन, अजान और चर्च की घंटियों की आवाजें शहर की आवाज में समाई सी लगती हैं। लेकिन जाम और गाड़ियों का शोर कान को अच्छी लगने वाली इन आवाजों को बेसुरा करता है। दरअसल पटना साहिब या पटना सिटी क्षेत्र की मुख्य समस्या ही जाम है। आलम यह है कि राजधानी पटना से पुराने पटना या पटना सिटी जाने में घंटों जाम से जूझना आम बात है। जाम के अलावा पीने का साफ पानी भी यहाँ की मुख्य दिक्कत है। पटना जिला सुधार समिति के राकेश कपूर बताते हैं,
एक अशोक राजपथ है, एक गुरु गोविंद सिंह पथ से लिंक होकर सुदर्शन, ये दोनों सड़कें प्रायः जाम रहती हैं। एक तो 10 साल से एक ब्रिज बन रहा है पटना सिटी स्टेशन के पास, वो अभी तक बना नहीं। नई सड़क बनाने की बात होती है गंगा के किनारे, उसका क्या होगा अभी तक पता नहीं।
बिहार की सबसे बड़ी गल्ला मंडी भी पटना सिटी में है। मारुफगंज की मंडी में तकरीबन 1500 दुकानें हैं और 25,000 लोगों का घर इसी मंडी की कमाई से चलता है। मारुफगंज किराना व्यवसाय संघ के संरक्षक बसंत लाल गोलवारा की मारुफगंज मंडी में बीते 100 साल से दुकान है। वो कहते हैं कि ये एशिया की सबसे पुरानी मंडी थी और यहाँ से सामान बांग्लादेश तक जाता था। आलम यह था कि दिन के हिसाब से शहरों में माल जाना तय होता था, मसलन मंगलवार को हजारीबाग, रांची और बुधवार को कहीं और। लेकिन आज ये मंडी मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रही है।
पानी की समस्या है, यहाँ तक शौचालय की समस्या है, लाइट नहीं है मंडी में हमारे, यहाँ तक कि पहले हमको 13 वो पुलिस का स्ट्रेंथ मिला हुआ था, स्ट्रेंथ था जो मंडी की सुरक्षा में रात दिन लगा रहता। आज 2-3 सिपाही से काम चलता, आज 4-5 बरस से कि सिपाही नहीं, सिपाही नहीं।
वहीं पटना सिटी सांझी संस्कृति का केंद्र है। यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, तो जैन धर्म के सुदर्शन स्वामी का निर्वाण स्थल कमलदह मंदिर भी यहाँ पर है। इसके अलावा बिहार का सबसे पुराना चर्च, पादरी की हवेली, पतली पतली गलियों में प्राचीन मंदिर, खानकाहें, मकबरों का यहाँ जाल सा बिछा लगता है। लेकिन सरकार इस जगह को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित कर पाने में नाकाम रही। वरिष्ठ पत्रकार नवीन रस्तोगी बताते हैं,
तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के बड़े महत्वपूर्ण और प्राचीन केंद्र हैं, जैसे पादरी की हवेली यहाँ का सबसे पुराना, बिहार का सबसे पुराना चर्च है। तो सरकार इसमें उदासीन है और न ही लोग उतनी अच्छी पहल कर पा रहे हैं।
वहीं अल्पसंख्यकों का शहर से पलायन भी इसकी सांझी संस्कृति को खतरे में डाल रहा है। रसायन शास्त्र के प्रोफेसर वीरेंद्र जैन का परिवार 1960 में दिल्ली से आकर पटना बस गया था। वीरेंद्र बताते हैं कि जैनियों के धार्मिक केंद्र के प्रति सरकार का रवैया उदासीन है। जैन धर्मावलंबी बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं।
जैन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी अधिक संख्या में जैन लोग थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बहुत पलायन होता चला गया, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। इतने प्राचीन यहाँ मंदिर हैं, इतनी प्राचीन संस्थाएँ हैं, और सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे चूँकि ना उनका रखरखाव है ना उनका विकास है।
बिहार में पटना सिटी गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है, लेकिन बदकिस्मती से इस तहजीब और ना ही इसके केंद्रों के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से बीबीसी के लिए सीटू तिवारी।
और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का, और स्टूडियो में समाचार पत्रों के साथ आ चुके हैं वात्सल्य राय। वात्सल्य, आज किन खबरों को प्रमुखता दी है अखबारों ने?
सुशीला जी, कल की तीन बड़ी खबरें थीं, जिसमें से एक भूकंप जिसके झटके महसूस किए गए अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर भारत तक, दूसरा छोटा राजन की गिरफ्तारी, और तीसरा गीता की भारत वापसी। इन तीनों खबरों को ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। भूकंप के झटकों की खबर को हर अखबार ने पहले पन्ने पर तो लगाया ही है, ज़्यादातर अखबारों ने इसे अपनी लीड खबर बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है 7.5 क्वेक इन हिंदुकुश किल्स 200 इन पाक एंड अफगानिस्तान 4 इन इंडिया। हिंदुस्तान ने इस पर हेडिंग दी है, हिंदुकुश से दिल्ली तक भूकंप। दैनिक जागरण ने हेडलाइन लगाई है इसकी, धरती हिलने से दहशत। नवभारत टाइम्स ने भी इसे प्रमुखता से छापा है और उसकी हेडिंग है दिल्ली धरती टूटी सांसें। दैनिक भास्कर ने इस पर हेडलाइन दी है, पाकिस्तान से भारत तक हिली धरती। सभी अखबारों ने भूकंप से टूटी इमारतों की तस्वीरें भी लगाई हैं, और जिसमें दिखाया गया है कि मलबा बिखरा हुआ है, लोग किस तरह से फंसे हुए हैं। इसके साथ ही छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबरों को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। द हिंदू ने इसे लीड खबर बनाया है, पायनियर ने भी इसे लीड खबर बनाया है। पायनियर की हेडलाइन है छोटा राजन हेल्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसी खबर की हेडिंग दी है छोटा राजन बड़ा कैच। दैनिक जागरण की अगर बात करें तो वहां हेडलाइन है अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन बाली में गिरफ्तार। पाकिस्तान से करीब एक दशक बाद भारत आई गीता की खबरों को भी ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। कई जगह गीता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरों को भी लगाया गया है। अमर उजाला ने भूकंप की खबर और राजन की खबर को हेडलाइन नहीं बनाया है, बल्कि गीता की खबर को ही अपनी लीड खबर बनाया है और हेडलाइन दी है लौटी भारत की गीता, परिवार को नहीं पहचाना। दैनिक जागरण ने इस खबर की हेडिंग दी है गीता की कहानी में आया नया मोड़। दैनिक भास्कर का हेडिंग है इशारों में कहा मजाक में भी अब पाक नहीं जाऊंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अच्छा इंटरेस्टिंग हेडलाइन लगाया है इंडियाज डॉटर होम एट लास्ट। हिंदुस्तान ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी जानकारी दी है कि बिहार चुनाव खत्म होते ही इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। इसी तरीके से मोदी की जो बिहार की रैली है उसको भी ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वात्सल्य। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में सोमवार दोपहर महसूस किए गए भूकंप के झटकों के असर से मरने वालों की संख्या 260 से ज़्यादा हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। सऊदी अरब के दक्षिणी शहर नजरान में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। केन्या पुलिस के मुताबिक नैरोबी इंटरनेशनल मैराथन में दूसरा स्थान पाने वाले धावक पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इसराइल की सेना का कहना है कि उसने गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर दो हवाई हमले किए हैं। सेना का कहना है कि ये हमले इसराइल में हुए रॉकेट हमले के बाद किए गए। बजट घाटा कम करने की कोशिश के तहत कल्याणकारी मदों में अरबों डॉलर की कटौती करने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ नमस्कार भारत में इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत।